कोसी का कार्यक्रम मुनिसन के पावन स्थान में आयोजित किया गया है। कविगण हैं श्री सरोज कुमार जी सरोज इंदौर, श्री राजेश निगम जी, श्री चंद्रसेन जी एवं अन्य कविगण, और साथ में महाराष्ट्र की भी कविताओं को आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सायकाल 6 बजे से ताकि आपको भेजी से आज रविवार है और प्रथम
सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी एक दिन और अपने पास है जिसमें बैठकर हम अपने ही आत्म विकास के लिए कुछ बातें करेंगे। बहुत पहले मैंने एक घटना सुनी थी कि एक व्यक्ति ने रात में शराब पी ली और वह शराब पी करके जब अपने घर वापस लौटा तो घर में ताला लगा हुआ था। अब चूंकि शराब के नशे में था तो वो चाबी ताले में डालता तो वो हाथ हिल जाने से खुल ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गई उसको, एक वहीं पर पुलिस वाला भी देख रहा था कि इसको मुश्किल पड़ रही है। उसने जाकर के कहा कि देखो तुम्हारा हाथ हिल रहा है, अल्लाह मैं चाबी और खोल देता हूं ताला। तो उसने कहा चाबी तो मैं अपने घर की किसी को नहीं देता, और हाथ वहां हिलने वाली बात मत कहो, ये जो थोड़ा मकान जो हिल रहा है उसको थोड़ा संभाल लो तो चाबी तुम्हें लगा लूंगा। पूरा मकान उसको लग रहा है कि वो हिल रहा है और वो स्वयं हिल रहा है। ये इस तरह के भ्रम हमारे जीवन में शुरू से हैं। हमें लगता है कि यहां जो कुछ भी है वही गड़बड़ है, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक हैं। और तब हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम शुरुआत दूसरे को सुधारने और संभालने से करते हैं, जबकि हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने से, अपने को संभालने से शुरू करना चाहिए और अपने ही भ्रम तोड़ना चाहिए। धर्म और कुछ नहीं करता, धर्म हमारे ऐसे छोटे मोटे भ्रमों को तोड़ देता है, हमारे मोह को तोड़ देता है। धर्म में जितनी भी बातें कही गई वे सब हमारे मोह को तोड़ने के लिए कही गई। धर्म की परिभाषा भी बनाई है तो यही कहा कि अपना कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य भी छोटा सा नहीं है। अपने को लगता है कि हमने गृहस्थी बना ली है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस गृहस्थी को ठीक ठीक चलाएं और हो गया हमारा कर्तव्य पूरा। कहते इतना ही नहीं है, कर्तव्य बहुत व्यापक है। एक कर्तव्य हमारा अपने परिवार के प्रति है तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे समाज के प्रति है, थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे अपने देश राष्ट्र के प्रति है, और और अपने प्रति भी तो हमारा कोई कर्तव्य है, अपने आत्म कल्याण का कर्तव्य भी तो हमारा कर्तव्य है, और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ करना यह भी तुम्हारा कर्तव्य है। बस इसी का नाम धर्म है। जब व्यक्ति अपने आत्म कल्याण का विचार करता है तब मानिएगा उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होना शुरू हो जाता है, या कि जब वो प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करता है तब उसका आत्म कल्याण तो स्वतः होना शुरू हो जाता है। आप दूसरे से पार्क से बोलिएगा, आपका मुंह तो पहले ही मीठा हो गया, आपका मन तो पहले ही अच्छा हो गया। और आप किसी से गाली दे करके बात करिएगा, दूसरे तक गाली तो बाद में पहुंचेगी पर अपना मन तो पहले खराब हो जाएगा। इसलिए लिखना पड़ा कि योग कर्म सुकौशलम। अगर हमें इस संसार में रह करके और कुछ करना है, निरंतर हमें कर्म करना है, कर्तव्य करना है, तो उसमें कुशलता होनी चाहिए, कर्म करने की कला आनी चाहिए। कर्म के बिना तो हमारा जीवन चलता नहीं है, पर कर्म करने की कला सीख लें तो जीवन में धर्म आ ही जाएगा। और कर्म दो ही प्रकार से करना चाहिए और हम विभिन्न प्रकार से करते हैं, हमें संभाल लेना चाहिए अपने कर्मों को। ये व्यक्ति संभाल ले, वैसे मेरे पास अभी अचानक ही दूसरा ही आया है कि परिवार के बारे में कुछ कहिएगा, मैं फिर मन बनाऊंगा कभी। इसलिए आज तो अपन ये समझ लें कि हम जहां हैं वहां हमें कर्म तो रोज करना है, पर कैसे कर्म करें हम। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि जिसका परिवार ठीक नहीं है, जिसका अपना समाज ठीक नहीं है, उसका आत्म कल्याण का तो कोई उपाय है नहीं भैया। यहां हम घंटे भर बहुत बढ़िया सी बातें सुने और परिवार में 23 घंटे जाकर के कलह करें या कि राग द्वेष करें, तो इससे हमारा संसार तो बढ़ेगा ही, घटता नहीं है। जिस व्यक्ति के आपस में संबंध अच्छे हैं वो व्यक्ति ही धर्म ध्यान करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्म ठीक कर लें। कर्म समाज के प्रति भी हमारे कर्म कुछ हैं, हमारे परिवार के प्रति भी हैं, प्राणी मात्र के प्रति भी हमारा कोई कर्म है। लेकिन कर्म कैसा करना? कर्तृत्व से मुक्त होकर के कर्म करना, अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करना। हम तो जरा सा कोई काम करते हैं और उसकी शाबाशी चाहते हैं। और देखो, अगर मां से पूछो कि तुमने अपने बेटे की कितनी सेवा करी, तो मां कहेगी करी कहां पाई, जबकि उसने तो बचपन में भी अगर गंदगी फैला दी है तो अपने हाथ से गंदगी साफ करी है। नर्स से पूछो तो कहेगी कितना इतना किया और उसका पेमेंट इतना होगा, लेकिन मां से पूछो तो मां कहती कि कर ही कहां पाई हूं, इसको ठीक ठीक तो बना ही नहीं पाई, संस्कार दे ही नहीं पाई। सारा काम करती है और पालन पोषण करती है, कर्तव्य उसका मान करके करती है, और उसके पीछे उसका अहंकार नहीं है। बनारसी दास चतुर्वेदी का मैं कुछ पढ़ रहा था तब उसमें लिखा उन्होंने कि एक विदेशी व्यक्ति आकर कहता है कि आपके देश में मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगी तो एक ही अच्छी लगी, यहां के लोग कर्म करते हैं लेकिन कर्म के फल पाने की बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखते। मैंने देखा एक व्यक्ति नदी में गिर गया और दूसरे व्यक्ति ने देखा आजू बाजू कोई बचाने वाला नहीं है, खुद कूदा और उसको उठा के बाहर ले आके खड़ा कर दिया, फिर ये तक नहीं कहा कि मैं फलाना फलाना हूं, और चुपचाप चला गया और ना कोई किसी से कहने की आवश्यकता पड़ी कि मैंने किया है। और आज अपन थोड़ा सा करें तो लगता है कि दूसरे दिन पेपर में नाम आ जाता, धन्यवाद दे देते, अगर वीडियोग्राफर होता तो एक अच्छी फिल्म बना लेता, चार लोग देखते कि मैंने इतना अच्छा काम करा। कहते काम तो हम रोज करते हैं लेकिन ऐसा कर्तृत्व से ग्रसित होकर कर लेते हैं तो काम का मजा तो एक तरफ हो जाता है, फल का सुख दुख ही शेष रह जाता है। और फल तो हमारे हाथ में नहीं है, अच्छा करने का फल अच्छा तो मिलता है पर देर सवेर मिलता है, तुरंत भी मिलता है पर तुरंत से तो हमें कोई विशेष आनंद ही नहीं रहा, क्योंकि सारा हमारा ध्यान तो तुरंत के फल पर नहीं है, आगे क्या फल मिलेगा इस पर हमारी पूरी दृष्टि बनी रहती। और फिर हम जो वर्तमान में कर्म करते हैं उनका आनंद ही हम नहीं ले पाते हैं। कोशिश करिएगा कि कभी आपने सोचा होगा कि क्या सूरज ने कभी ऐसा अहंकार किया कि आज सुबह सुबह मैं उठूंगा, चिड़ियों को जगा दूंगा आज मैं, और खूब सारी रोशनी फैलाऊंगा। ऐसा कभी किसी को सूरज ने तो कहते नहीं देखा। नदी कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे दरवाजे के पास से निकलूंगी और तुम्हें पानी पिलाऊंगी, नहीं तुम्हें पानी पिलाती हूं, देखो मैं तुम्हारा कितना उपकार करती हूं। नदी ने कभी नहीं कहा। नदी पानी पास से गुजर जाता है, जो जितनी अंजलि भर लेता है वो उसका हो जाता है। नदी कभी ऐसा अहंकार नहीं करती। ये प्रकृति हमें निरंतर दे रही है, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करते हुए भी कभी ये नहीं चाहती कि हम उसे शाबाशी दें, धन्यवाद दें। लेकिन हम अगर अपने स्वभाव के अनुरूप कोई कार्य करते हैं, स्वधर्म जिसको कहते हैं, हम अपना आत्मधर्म अगर करना शुरू करते हैं, जिस जो कि अच्छे कार्य हैं, तो उसका हम चाहते हैं कि हमको धन्यवाद मिले या कि हमको उसकी वाहवाही मिले। आचार्य महाराज के जीवन की एक घटना है, मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में जो अनुभव करी, बहुत वर्षों से जो है मन था कि सबके बीच में आवे, तो आज वो जो है उपस्थित है। वो चीज मेरा अपना कर्तव्य जितना था वो मैंने कर दिया अपने इस जीवन में। मेरे मन में 12 वर्ष से ये बात थी कि कभी आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में लिखूंगा। आज वो चीज उपस्थित हो गई, मैं अपने कार्य से निवृत्त हो गया। शेष जीवन में मुझे अब विशेष और कुछ करने का शेष मुझे लगता कि मुझे और कुछ नहीं करना, एक काम मेरा पूरा हो गया, रहा अपने आत्म कल्याण का, सो धीरे धीरे जैसा बनेगा वैसा करता ही हूं, करता चला जाऊंगा। लेकिन अपने गुरु के प्रति जो कुछ भी हो सके वो पूरा हुआ, वो उदाहरण सुनाता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें निकट से देखा। और नैनागिर की बात है, 3 लाख जनता वहां पर पड़ी है, इतनी छोटी सी जगह पर काम करने वाले लोग मुश्किल में हैं कि 3 लाख लोगों के लिए, और तो सब ठीक है, अपना अपना खाना सब ले आए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था कहां से करें, कितनी व्यवस्था करें पानी की। और मौसम ऐसा है कि पानी की तो त्राही त्राही है, मार्च के फरवरी के लगभग की बात है, फरवरी मार्च में सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। मंच पर आचार्य श्री पहुंचने वाले हैं, फेरी पूरी हो गई, गजरत की फेरी, और आचार्य श्री जैसे ही मंच पर पहुंचे 4-8 लोग भागते भागते चले आए। हम लोग तो घबराए कि कहीं कुछ हो गया क्या, नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह था, उस उत्साह को देख के लगा कि कुछ अद्भुत हुआ है, और आके निवेदन किया कि महाराज आपकी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि पानी पानी हो गया, जहां पानी की कमी महसूस हो रही थी कुछ बच्चे लोग जो है इधर से थोड़ी दूर नाले के तरफ चले गए। वर्षों से बंद पड़ा हुआ एक हैंड पंप था, किसी ने ऐसे ही चला दिया, चलाए तो उसमें से पानी निकला, पानी साफ था, चलाते गए, लोग की भीड़ लगती गई, घंटे भर वहां फेरी चलती रही, यहां उसमें से पानी निकलता रहा, लोग पीते रहे, और फिर घंटे भर की फेरी खत्म हुई, आप मंच पे आके बैठे, वहां पर पानी जो है समाप्त हो गया। ये सब तो आपकी कृपा है। अब देखो, यहां तो घटना, ऐसी घटना तो सबके साथ घटित हो सकती, लेकिन इसके बाद की घटना सबके साथ घटित नहीं होती। इतने बड़े आचार्य महाराज मंच पर बैठे और क्या कहा उन्होंने कि भैया मेरा इसमें कुछ नहीं है, हजारों लोग आए हैं, उनकी पवित्र भावना का ये प्रतिफल है कि कोई यहां से प्यासा कैसे जा सकता भगवान के दरबार से, इसलिए पानी आया है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। कहते किया भी लेकिन उसका श्रेय नहीं लिया। बस इतना ही क्या अपन कर सकते हैं, अपन अच्छा कुछ करें, रोज एक अच्छा काम करें, और तो सैकड़ों काम करते हैं पाप के, ये तय कर लेंगे कि रोज एक अच्छा काम करेंगे और उस अच्छे काम का फल नेकी कर दरिया में डाल। कहते हम नहीं चाहेंगे कि कोई उस काम के लिए हमको वाहवाही देवे, तो ऐसा क्या हम नहीं कर सकते, रोज कर सकते हैं ऐसा काम। और दूसरी बात, ये तो कर्तृत्व से मुक्त होके काम कर लिया, बस थोड़े से में मुझे अपनी बात कहनी और थोड़ा सा कहूं। और दूसरा, कर्म में हार्दिकता होनी चाहिए, ये चीज जो है आज बहुत कम हो गई है। हम उसमें हृदय डाल के कर्म नहीं करते। बच्चों को देखा होगा आपने, वे कैसा काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे बड़ी तल्लीनता से करते हैं। अगर अभी बाहर कोई ने रेती पटक दी हो, ला करके ढेर सारी रेत का ढेर लगा दिया, वो चले जाएंगे और एक ठो घर बनाएंगे उस रेत में, वे कंस्ट्रक्टिव हैं। जो कंस्ट्रक्शन जानते हैं, आप बनाएंगे मकान बाद में बनाएंगे और शायद दूसरे का मिटा के बनाएंगे, झगड़ा करके बनाएंगे, एक इंच जगह के लिए बनाएंगे, लड़ करके बनाएंगे अपना मकान उस रेत से, लेकिन उनने तो जाकर के अपना पैर फंसाया और उसमें एक मकान बनाया जहां खिड़की लगाना, खिड़की दरवाजे दरवाजे सब कुछ करा और उसका खूब आनंद लिया। दुनिया में क्या हो रहा है उनसे पूछो तो उन्हें कुछ नहीं मालूम, उनका घर बन रहा है, इससे उनको मतलब है। कैसी तल्लीनता उनकी होती है। और बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं लेकिन उसमें हमारी हार्दिकता नहीं होती। जयेंद्र कुमार ने एक उदाहरण लिखा कि जब वो रामायण सुन करके वापस लौटे और घर आए तो देखा कि उनके दोनों बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, नाती खेल रहे थे, एक बिटिया थी एक बेटा था, दोनों खेल खेल रहे थे। अब थके हारे आए थे, वहीं बेंच पर बैठ गए, उनने सोचा देखें ये क्या खेल खेलते हैं, तो दोनों घर बनाने का वही खेल खेल रहे थे। और घर बन जाने के बाद अब भाई ने कहा कि मेरा घर तेरे से सुंदर बना है, तो उसने कहा सुंदर बना होगा पर मेरा घर बड़ा है। तो भाई ने कहा कि मेरा तो तेरे से और ज्यादा बड़ा। अच्छा तुम्हारा कितना बड़ा? उसने कहा इतना बड़ा। अब उसने कहा और ज्यादा हाथ फैलाए बिटिया ने कि हमारा इतना बड़ा, तो इसने और फैलाए हाथ कि हमारा और इतना बड़ा, अब क्या कहें? तो बिटिया बोली कि हमारा हमारा घर हमारा रामचंद्र जी बराबर। अब रामचंद्र जी बराबर, अब तो बेटे को बहुत मुश्किल पड़ी कि अब क्या कहें। तो बेटा मालूम क्या बोला? बोला हमारा दो रामचंद्र जी बराबर। तो बिटिया कहती कि रामचंद्र जी तो एक ही है, एक ही है। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मैं इनके इस कार्य से प्रभावित हो गया, मैं पूरी रामायण एक तरफ भूल गया, रामायण में पता नहीं उनने क्या क्या कहा होगा, लेकिन जो रामायण इनके भीतर घटित है कि रामचंद्र जी एक हैं और सबसे बड़े। ये कर्म है जो कर्म करते करते भी भगवान को नहीं भूलता है, वो कर्म की हार्दिकता है। इतना सब होने के बाद भी उसके पीछे छुपी हुई वो तो ऐसा है जैसे कि कागज का टुकड़ा है। कर्म तो कागज का टुकड़ा है, उस पर मोहर लग जावे तो रुपया बन जाता, और मोहर किसकी? भावना की मोहर लगती है, हार्दिकता की मोहर। जिस कर्म पर हार्दिकता की और भावना की मोहर लगी हुई है सो वही कर्म अच्छा है। अपन जब तप ध्यान नियम संयम सब पालन करते हैं, ये भी कर्म है, लेकिन इस कर्म में अगर हार्दिकता ना होवे तो क्या होगा? जैसे अपने पास सोडा साबुन तो है और पानी नहीं है, क्या करोगे आप? सोडा साबुन किस काम का है? क्योंकि पानी होना चाहिए। पानी क्या है? वो जो भीगापन है, वो जो गीलापन है, वो जो भावनाओं का गीलापन है, वो ही तो पानी है। और ये जो जप तप इत्यादि है ये तो सोडा साबुन है। वो सोडा साबुन का काम कब आएगा? जब उसके पास साथ में पानी की भावना हो तब वो काम आता है। एक बहुत छोटी घटना पड़ी थी, वो आपको सुनाता हूं। बात इतनी ही है, आप चाहे जितनी बड़ी इसको करते जाइएगा उतनी बड़ी हो जाएगी। पर जीवन में खूब कर्म अपन करते हैं, पाप कार्य भी कर रहे हैं, धर्म के कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जब जब भी हम धर्म के कार्य करते तो उनसे शांति नहीं मिलती है, तो लगता हमारा भ्रम नहीं टूटता है, तो लगता है कि कहीं कुछ खोट तो है। और खोट यही है कि हम उसमें भी अहंकार कर लेते हैं और उसमें भी हम आनंद नहीं ले पाते हैं, भावनात्मक नहीं हो पाते। इसलिए मुझे ये बात आज आपसे कहना पड़ी। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं कि एक मंदिर बना और बहुत अच्छा मंदिर बना और उसमें भगवान भी विराजे गए। और एक दिन वहां के पुजारी को, छोटे वाले पुजारी को, बहुत पुजारी थे उस मंदिर के, तो छोटे वाले पुजारी को सपना आया कि भगवान ने एक तिथि बताई है कि इस तिथि में वे रात में आएंगे, मंदिर में आएंगे। अब उसको सोचा उसने कि सपने की बात है और हंसी ना हो जाए, किसी से कहेंगे कि तुम ऐसा सपना देखते, और अगर मान लो नहीं बताएं और सही सही हो गया तो फिर लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तो उसने और सब बड़े पुजारियों से कहा कि हमको तो ऐसा सपना है, और सब लोगों ने खूब हंसे, कह रहे सपना अपने से कुछ होता क्या कि भगवान ऐसे सपना दे करके आते हैं और तिथि बताएंगे कि इस तिथि में हम तुम्हारे यहां आएंगे। फिर भी उन सब के भीतर जब मीटिंग हुई तो विचार आया कि हो ना हो अगर सपना सही निकल गया अपन तैयारी तो कर ही लो, सपना सच हो जाएगा इसका भरोसा नहीं है, तैयारी तो कर ही लो। बात यह है इतनी सी बात है और सब तैयारी में जुट गए, मंदिर साफ सफाई कर दी जैसा जो करना था और अब इंतजार करो। तो सब लोग वहीं पर सोने लगे, वो जो तिथि थी उस तिथि में सब साफ सफाई करके और सोए। अब सोए धीरे धीरे करके रात होने लगी और मन में तो यही था, बात करते चले जाते थे, अरे कहीं सपना सही निकलता है, ऐसे आते हैं क्या भगवान, 10 बज गए अब क्या, अब आएंगे क्या, 11 बज गए अब आएंगे क्या, अरे सो इसमें क्या रखा हुआ है, और जो है सब ऐसे बात करते करते और सो गए। वो जो पुजारी छोटा वाला था उसकी आंख तो लगती नहीं थी कि सपना सच निकल सकता है, भगवान तो आएंगे। और कहते हैं कि बाहर रथ रुकने की आवाज आई उसको, उसने बाकी से कहा कि रथ रुका है, अरे गंडे तुम कैसी बात करते हो, सो जाओ चुपचाप, नींद खराब मत करो। अब जब थोड़ी देर के बाद पैरों के कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने कहा हो ना हो भगवान आ गए होंगे, उसने फिर जगाया सबको, सबने कहा देखो तुम्हें नींद नहीं आ रही तो बाहर जाओ हमें सोने दो, ऐसे आते हैं कहीं भगवान अगवान। और कहते हैं पूरी रात बीत गई, सवेरे जब उठे सब जागे तो पैरों के निशान थे और रथ के निशान थे, वो देख करके सब अब रो रहे थे कि भगवान आए और हम तो सोते ही रहे, सारी तैयारी कर ली लेकिन हृदय तैयार नहीं था। मंदिर तो पूरा साफ कर लिया था, सो भी रहे थे मंदिर में, लेकिन हृदय तैयार नहीं था, उत्साह नहीं था कि भगवान सच में आएंगे। बस यही तो हमारे साथ में है कि पूजा पाठ यम नियम संयम सब कुछ करते हैं लेकिन वो हार्दिकता वो उत्साह नहीं है कि सचमुच इसके द्वारा मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। सारी पूजा पाठ जो है बिना हार्दिकता के और हमारे जीवन को कोई शांति नहीं दे पाती है। कोशिश करिएगा, एक अच्छा काम करिएगा, चाहे वो पूजा का काम हो, चाहे किसी गरीब व्यक्ति के लिए 2 जून का भोजन देना, चाहे आपने मंदिर में पूजा की हो या वहां जाकर के, या जैसा कि अभी कहा कि प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अपना 5 मिनट दिया आपने, एक छोटा सा काम किया। दीपावली आने वाली है, कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास दिया जलाने के लिए दिया नहीं होगा, तेल नहीं होगा, बाती नहीं होगी, अपने घर में तो रोशनी कर लेंगे लेकिन वहां अंधेरा मचा रहेगा। कभी सोचा कि जाकर के हम भी उसे कहें कि तुम भी अपने जीवन में रोशनी करो, लेकिन भैया जब तक भीतर रोशनी ना हो, वे जब तक हार्दिकता ना हो, तब तक ऐसे अच्छे काम भी हो नहीं पाते हैं। संसार के अच्छे काम करो या कि परमार्थ का अच्छा काम करो, सब में बहुत हार्दिकता होनी चाहिए। मैं भावना भाता हूं कि अपन जो भी कर्म आगे अपने जीवन में करेंगे उनको अहंकार से मुक्त होकर के करेंगे। निमित्त मात्र हैं अपन इसमें, संसार में जो कुछ घटित होता है उसमें अपन निमित्त बन जाते हैं। अच्छे कार्य में तो यही मानना चाहिए कि हम निमित्त बने, और बुरे कार्य में हमने किया अब हमें ऐसा नहीं करना, ऐसा विचार भी साथ में करना, और कर्म करते समय उत्साह और हार्दिकता होनी चाहिए। मैं इतनी ही बात कह के, और आज मेरे साथ नमोकार करें और आगे जो भी है वो आए हुए हैं सब लोग अपनी बात करेंगे, वो मेरे साथ नमोकार इस भावना से करें कि इस नमोकार में भी हमारी हार्दिकता आवे। विनोबा जी ने तो एक जगह लिखा कि जब उनसे कहा गया कि कितनी बार पढ़े मंत्र, सुकेन लेके गिनना पड़ेगा, भगवान का नाम भी गिन गिन करके पढ़ोगे, अरे पाप करो गिन गिन के लेकिन धर्म गिन गिन के न करो, जितने हो सके उतनो करो, ऐसा ही ये हार्दिकता है। इसलिए जो है इसी भावना से कि अपन नमोकार अपने भीतर कर्म करने की उत्सुकता और हार्दिकता आवे, ऐसी भावना के साथ। मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारी लोग
विद्यासागर मुनि महाराज
आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। महाराज श्री ने जैसा कि बताया है कि आचार्य श्री के जीवन पर उन्होंने 12 वर्ष में पुस्तक लिखी है और आप 12 मिनट अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि सर 12 मिनट और बैठे रहिएगा। मैं जैसा कि आपको विधि से समय का अभाव है महाराज श्री को दरिया के लिए जाना है बिना किसी भूमिका के आगामी कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर
कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो वर्षों प्रतीक्षा के बाद हमारे सौभाग्य से घटित हो पाता है। परम पूज्य मुनि जी आदरणीय एलक जी छुल्लक जी आदरणीय यशपाल जी आदरणीय अमरनाथ जी आदरणीय सुरेश जैन साहब मड़वैया जी भोपाल के गणमान्य सज्जनों धर्मानुरागी देवियों और सज्जनों बहुत ही अद्भुत प्रसंग होता है कि महाराज इस तरह से अपनी वाणी से हमको मोह लेते हैं। मुझे तो इंदौर याद आ रहा है कि जहां पर हम मंत्रमुग्ध करीब 6-7 माह तक मनुष्य से जुड़कर प्रकारांतर से अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते रहे वह सौभाग्य आज आपके द्वार पर है। महाराज जी ने कहा जरूर है कि मैं 12 साल तक 12 वर्षों का लिखना चाहता था और लिखकर मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, लेकिन ये महाराज जी के जीवन में जो अपने गुरु की छवि है जो उनके प्रति आदर है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने तो अभी बैठे बैठे देखा कि जैसे ही उनको याद करते हैं तो उनकी आंखें आह्लाद से आनंद से भराती हैं। ये कोई उससे कैसे आदमी मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा जरूर, क्योंकि उनके मन में एक संकल्प था कि वे अपने गुरु के प्रति अपना प्रणाम व्यक्त करते हुए एक पुस्तक लिखेंगे। वो उन्होंने लिखी है जिसका कि आज हमारे सौभाग्य से हम सबकी साक्षी में महाराज जी और मुनि संघ के सानिध्य में आदरणीय यशपाल जी जैन जैसे व्यक्ति के द्वारा इसका विमोचन होगा। यशपाल जी इस देश के वरिष्ठ और अत्यंत आदरणीय साहित्यकार हैं। गांधी जी से जुड़े रहे, साहित्य से जुड़े रहे और अपने आशीर्वादों से करीब 4 पीढ़ियों को अभिषिक्त करते रहे, उन्हें प्रेरणा देते रहे, उनके कर्मों से ये कार्य होगा। इस पुस्तक में जिसका कि विमोचन होगा, पुस्तक कैसी लिखते महाराज, अपने गुरु पर, गुरु के जीवन पर। आप ये उपन्यास पढ़ाओ, उसमें लेखक बन जाता है कि मैं जब गया, एक स्वयं एक आत्मकथात्मक शैली होती है, या नाम लिख देते हैं कि मोहन आया, मोहन गया, कि भाई विद्यासागर जी का जन्म इस तारीख को हुआ, इस तारीख को उन्होंने ऐसा किया, इस तरह से कमेंट्री हो सकती थी। लेकिन इसमें चमत्कार यह है कि कथा कहने वाला विद्यासागर जी की मां के रूप में उपस्थित है। एक मां अपने बच्चे की गतिविधि को प्रारंभ से लेकर मूल बनाने तक और स्वयं भी आईकार बनाने तक जो देखती है पहचानते हुए, उस सबका वर्णन करती है। लेकिन वर्णन कोई तिथियों में नहीं है, वर्णन केवल घटनाओं में नहीं है, कई गांव के बहाने कोई बड़ी बात है तो इस पुस्तक में है। गुरु जी के जीवन के प्रसंग हैं और महाराज श्री ने जैसा हमको देखा है उसको एक मां के सांचे में, एक मां की भावनाओं में पुत्र के प्रति कुछ व्यक्त करते हुए उपदेश भी दे दिया है, आत्मानुशासन भी है, आत्मचिंतन भी है और कथा भी है, उसमें प्रवचन भी है। लेकिन प्रवचन प्रवचन की शैली में नहीं है, जीवन भी है लेकिन जीवन सामान्य जीवन की शैली में नहीं है। एक ऐसे स्तर पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन आदरणीय यशपाल जी करें, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं। और हमारा यह एक अतिरिक्त सौभाग्य है कि आदरणीय अमरनाथ जी शुक्ल, जिनसे मेरा इसी संस्कृति भवन में भोपाल में एक बड़े साहित्यिक जलसे में आकस्मिक रूप से परिचय हुआ था, मैंने उनसे इंदौर में जब महाराज जी की कविताएं सामने आई तो मैंने उनसे आग्रह किया था, वे तो दिल्ली रहते हैं, कि एक पुस्तक महाराज जी की अगर आ सके। और उसके बाद वो ऐसे जुड़े हैं कि आज मुनि क्षमा सागर की कविताओं के दूसरे संस्करण के विमोचन के समय वे स्वयं भी उपस्थित हैं, ये हमारे लिए एक अतिरिक्त उल्लेखनीय घटना है। मैं चाहता हूं कि यशपाल जी पधारें और विमोचन करें एक तीन तीन चार चार मिनट, क्योंकि इस पुस्तक पर विचार, इस पुस्तक पर हम यशपाल जी को और अमरनाथ जी को दोपहर को सुनेंगे। जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा है कि दोपहर को कवि गोष्ठी होगी, कवि गोष्ठी तो होगी, कवि गोष्ठी को हम छोटा बड़ा कर लेंगे, लेकिन ये जो पुस्तक है इसमें जो नवनीत है उसकी एक झलक, एक झांकी जिन्होंने पढ़ा है, जो उससे गुजरे हैं उनके मुंह से भी हम सुनना चाहेंगे। तो दोपहर को जो लोग आ सकें कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं अमरनाथ जी से कि वो दो तीन मिनट जो संलग्नता, उसके बाद मैं चाहूंगा कि यशपाल जी, क्योंकि ये तो भूमिका है, भूमिका में तो आप हैं, फिर तो एक कलश है जिसका कि अनावरण होना है। आदरणीय अमरनाथ जी शुक्ल।
जीवनी महाराज जी, अलग महाराज जी, सुंदर महाराज जी, उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं सरोज जी ने मेरे बारे में जो कुछ कहा उसके बारे में क्या कहूं, बस इतना ही कहना है कि सरोज जी ही माध्यम थे मुनि समाज सागर जी तक मुझे पहुंचाने का। मेरे लिए तो ये इस तरह है जैसे राम से अधिक राम कर दासा। अगर मेरा कोई पुण्य संचित पुण्य कर्म रहा होगा जो इन्होंने मुझे दायित्व सौंपा और मैं महाराज जी से जुड़ता चला गया, उसके बाद इस पुस्तक का मैं इनकी क्षमा सागर जी कविता पुस्तक मैंने प्रकाशन के लिए लिया, तो प्रकाशन की बात तो बाद में थी, उस पुस्तक को पढ़ करके, उस कविता को पढ़ करके मैंने महाराज जी के दर्शन तब तक नहीं किए थे, पढ़ करके मुझे लगा कि ये संत कम यानी जीवन का दृष्टा आत्मचेता अधिक। और उसके बाद जब पुस्तक प्रकाशित हो गई, एक एक में इतना पहुंचने के बाद भी उसमें एक एक उद्धरण देना मैं मोह समर्थन नहीं कर पा रहा हूं कि अभी तो मुझे और चलना है, अभी तो चलने की आवाज आती है, नहीं दिखता है इतनी इस वितरकता के सोमवार तक पहुंचने पर भी अभी लगता है महाराज जी को कि बहुत कुछ पाना और जाना बाकी है। इस पुस्तक को प्रकाशित हुई और उसका महाराज जी के चरणों में अर्पित की गई, कुछ हुआ उसके बाद उसकी कविता के भाव से, महाराज जी के कवित्व से, साधु तत्व से ज्ञान तत्व से मैं इंदौर पहुंच करके परिचित हुआ, फिर ये आत्मानुशासन पुस्तक मेरे पास आई, मैंने इसकी पांडुलिपि जब पढ़ी तो लगा कि क्या है, यानी एक शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति है या श्रद्धा है या समर्पण है, या एक माता अपने पुत्र के प्रति जो भाव रखती है वो है। यानी मुनि महाराज जी ने अपने को मात्र के रूप में उतार करके जो कुछ किया है लिखा है, जैसे माता अपने बालक की हर गतिविधि को जानती है, समझती है, देखती है, और कहीं कुछ जैसा भी महाराज जी ने कहा कि कभी वो नहीं कहती कि मैंने कुछ किया है, वैसे महाराज जी ने कहीं इसमें नहीं लिखा कि मैं मुझे हमारे गुरु जी ने कोई उपदेश दिया है। उसके हर पदचाप में, हर भावभंगिमा में बाल रूप के ग्रहित मातृभाव से तो देख रहे हैं, लेकिन शिष्य रूप में उसको ग्रहण करते चले हैं, जो कुछ आत्मसात करते चले हैं और जो कुछ प्राप्त किया है, ये कहीं नहीं लिखा कि हमें हमारे गुरु महाराज ने आचार्य श्री ने उपदेश देकर के नहीं कुछ ज्ञान दिया, स्वयं ही पाया है जो कुछ पाया सब कुछ। ये तो जीवन चरित्र का, किसी के जीवन चरित्र में ऐसी अद्भुत शैली आज तक नहीं देखने को मिली, जो कि क्योंकि अगर ये शिष्य के रूप में लिखते तो शायद उस भाव को नहीं पा सकते जो माता अपने पुत्र के भाव में पाती है। सब कुछ उसी रूप में ग्रहण करके और उस भाव को व्यक्त करते हुए इतना कुछ उन्होंने प्राप्त किया है कि आज विकराजता के सोपान तक महाराज जी श्री पहुंचे हैं। एक प्रसंग उसमें मुझे बहुत ही प्रसंग दर्शन में लिखते हैं कि मैं जब गया तो बड़ी भीड़ थी, मैं अंतर तक जा नहीं सका, लेकिन लौट आया, लेकिन कहां लौट पाया। उसे पढ़ते मुझे लगा कि नरेंद्र जी ऐसे गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास और बड़ा नहीं कुछ नहीं बेकार है, बड़े हुआ करके लौट आए, लेकिन कहां लौट पाए। लेकिन जब दो दिव्य आत्माओं का, दैवों का मिलन होता है तो लगता है जैसे फ्रीक्वेंसी बन जाती है और एकाकार हो जाते हैं। इसी तरह से आचार्य श्री को गुरु महाराज जी के दोनों काल के जितने उसके प्रेरक प्रसंग भी इसी तरह के हैं, लगता है कि वो प्रसंग नहीं तो घटना नहीं है, सूत्र है। आप अगर उसमें से लिप्त जीवन के सूत्र बन जाते हैं तो बहुत कुछ है। यानी भाव विभोर होकर के मैं उसे, यहां तक कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो साहित्य तो उसकी रुचि निधि नहीं, लेकिन उसको जो पढ़ा तो बड़ी अच्छी किताब लिखी है। मैंने कहा तुम्हें भी बड़ी अच्छी लिखी, कह लिया हाँ ऐसा ऐसा पढ़ने को नहीं मिला इस तरह से जिस भाव से लिखा है। तो महाराज श्री ने जो लिखा है वो तो लिखा है, उसके लिखने में यानी आप अगर मन चाहे तो उसको आप साफ करते चलेंगे। इस शैली से लिखा है और इस भाव से लिखा है, तो दो खंड उसमें एक जीवन प्रसंग है और एक प्रेरक प्रसंग है। दोनों ही अपने में इतने हैं कि आप निर्भर कर देते हैं, लगता है कि हर पद में हर बात में कहीं कहीं हमको मिलता चला जाता है। तो समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप इस पाल जी इसका विमोचन करें और महाराज जी की कृपा है आपको आशीष।
अमरनाथ जी जिनको कि आप सुन रहे थे, ये केवल प्रकाशक नहीं है, स्वयं उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, और अभी अभी उन्होंने एक इतना मोटा पोथा पुराण और इतिहास से प्रेरक जीवनियों को लेकर के, चरित्रों को लेकर के प्रकाशित किया है। मौका लगे तो आप उसे भी देखिएगा। हम अमरनाथ जी को दोपहर को पुनः सुनेंगे इस पुस्तक पर, और दोपहर के सेशन में इस पुस्तक को आप लोग भी जो यहां से प्राप्त करना चाहेंगे करके देख करके आएंगे तो उसका आनंद और रहेगा। मैं अब आदरणीय परम श्रद्धेय यशपाल जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे पुस्तक का विमोचन कर हम सब पर कृपा करें और इस पुस्तक को हम सबके लिए औपचारिक रूप से सुलभ बना दें। नहीं हमें बाद में भेंट करेंगे दोपहर को, दोपहर को इस पर पूरा विवेचन मैं यशपाल जी से आग्रह कर रहा हूं। मित्रों शायद नरेंद्र जी का मैं काम पूरा कर दूं, इस पुस्तक का मूल्य जो लगभग लागत जैसा है वो तो है 80 रुपया, लेकिन कुछ लोगों ने उनमें विशेष रूप से सर सेठ हुकमचंद जी की पुत्री स्वर्गीय श्रीमती चंद्रप्रभा बाई जी मोदी के परिवार ने 500 पुस्तकें मुनि संघ जो पूरे देश में है विद्यासागर जी से विशेषतः जुड़े हुए और अन्यों के लिए उसको खरीदा है, इस कारण उसका मूल्य जो और हम कम रख सकते हैं तो आज के लिए है कि रोजाना आज कल के लिए ऐसा समझ लीजिए क्योंकि आगे पता नहीं, फिर आज के लिए उसका मूल्य केवल 30 रुपया रखा गया है। और ये जो लोग कम पैसों में मिलने के कारण प्रसन्न हो रहे हैं और ये जो क्षमा सागर जी की कविताएं नामक पुस्तक है उसका मूल्य 60 रुपया है, उसको फिर से ताली बजवाने के लिए केवल 20 रुपये में। यहाँ बाहर जो स्टॉल है वहां पर उपलब्ध है। मैं आदरणीय यशपाल जी से आशीर्वचनों के लिए शुभकामनाओं के लिए दो शब्द के लिए आग्रह करता हूं।
होते मंत्र होते हैं। हमारे लेखक
विद्वान रहकर इतने सक्षम और इतने सामर्थ्यवान हैं, अगर वो चाहते तो इतना मोटा ग्रंथ अपने गुरु के संबंध में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि वो शब्द नहीं देते, मंत्र देते हैं, उन्होंने इस पुस्तक को मंत्रों से विभूषित किया। इसलिए मैं प्रत्येक भाई बहन जो यहां पर उपस्थित है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस पुस्तक को पढ़े, और केवल पढ़े नहीं, पढ़े इसलिए कि उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है उससे उनको अपने जीवन में उतारना है। अगर वो अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, केवल एक पुस्तक के रूप में उसको पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे कि पुस्तक से पूरा लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। पुस्तक से पूरा लाभ तब मिलेगा जब उस पुस्तक को पढ़कर उसमें जो कुछ कहा गया है वो आप आत्मसात करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। कहा गया आपको उतारा गया, लेकर घर चाहते तो स्वयं को सामने रखकर पुस्तक को लिख सकते थे। उन्होंने स्वयं को सामने नहीं रखा। यहां पर इतनी माताएं बैठी हुई हैं, इतनी बहनें बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने गुरु के माता के मुंह से सारे स्त्री जाति को उन्होंने वाणी प्रदान किया। उन्होंने हमारे आचार्य श्री की माता जी को निमित्त बनाया, और निमित्त बनाकर जो कुछ इस पुस्तक में कहा है वो उन्होंने माता के मुंह से कहा कहलाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वैसे तो हम लोग बाद में मिलेंगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदी में दो शब्द हैं, एक शब्द है जननी, दूसरा शब्द है मां। जननी वो होती है जो भी बच्चे को जन्म देती है, मां वो होती है जो बच्चे को प्यार देती है। मां जन्म का दायरा सीमित होता है, मां का दायरा असीम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं होता, सबके प्रति प्रेम होता है। यह जो पुस्तक है इस पुस्तक में आप देखेंगे कि मां अपने पुत्र के संबंध में जो कुछ कहती है, मां कभी हमेशा सच्चे हृदय से अपनी बात कहती है। मैंने जो कुछ वाणी दी है वो सच्चे हृदय से निकली हुई वाणी है, और आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि जो कुछ मैंने कहा है वो एकदम सत्य है। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। ये जो हमारे पूज्य बहरा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं पुस्तक लेखक, उनको मैं क्या कहूं, जब जब उनका स्मरण होता है मेरा मन भीतर से भीग आता है। इतनी अच्छी बात कहते हैं कि लगता है कि उनको सुनते रहो और उनसे जो कुछ ग्रहण किया जा सके उतना हम ग्रहण करें। मुझे एक प्रसंग याद आता है पुस्तक से संबंधित। यह जो पुस्तक है इसकी पांडुलिपि जब मुझे मिली तो इस पांडुलिपि को लेकर मुझे अपनी बेटी के पास नागा जाना पड़ा। वहां मेरे पास समय था, मैंने उस समय का उपयोग करके मैंने उस पुस्तक की भूमिका वहां पर लिखी, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ये मैंने भूमिका लिखी है, इसको तुम भूमिका को पढ़ो, और भूमिका को पढ़कर मुझे सुझाव दो कि इसमें क्या मुझे कुछ घटाना बढ़ाना है। आपको मैं बताता हूं कि मेरी बेटी ने जब उस भूमिका को पढ़ा तो फूक फूक कर रोने लगी। उसने कहा गुरु जी ये जो आपने भूमिका लिखी है ये एक ऐसी पुस्तक की भूमिका मालूम होती है जो कि अलौकिक पुस्तक है। और फिर उसके बाद जब मैंने उनको पांडुलिपि दी, मैंने कहा कि तुम इस पांडुलिपि को पढ़ो तो जितना फूक फूक कर वो रोई थी भूमिका को पढ़कर उतना ही फूक फूक कर रोई पुस्तक की पांडुलिपि को पढ़। उसने कहा बड़ी वो पढ़ती बहुत है, बहुत पढ़ा है उसने, लेकिन उसने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक मैं अपने जीवन में पहली बार पढ़ी। मैं उनके लिए हमें क्या कहूं लेखक के प्रति, सिवाय इसके हम उनका आभार तो क्या माने,
जो सबको उपस्थित करते हैं उनके प्रति हम क्या कहें, मैं आप सबके ओर से और अपनी ओर से महाराज जी का को अपने प्रणाम निवेदन करता हूं, नमन करता हूं। और जैसा उन्होंने कहा कि कर्तव्य की पूर्ति हो गई, आदमी के जीवन में कर्तव्य की पूर्ति कभी होती है, एक कर्तव्य पूरा होता है दूसरा कर्तव्य निकल आता है। और महाराज जी का उन्होंने जो कुछ कहा वो तो उन्होंने ठीक कहा, अपने हिसाब से कह दिया, लेकिन हमारा भी जो हिसाब है, हमारी अपेक्षाएं नहीं उनसे, और अपेक्षा ये है कि उनके कर्तव्य जिसका उन्होंने इस समय पालन किया है वो कर्तव्य में सातत्य रहेगा। आगे और भी हमको ऐसी पुस्तकें, गुरु के प्रति उनकी भक्ति असीम है और वो भक्ति उनको आराम से बैठने नहीं देगी, चैन से बैठने नहीं देगी। एक पुस्तक के प्रणयन में उनको 12 वर्ष लगे, अगली पुस्तक आएगी वो तो दीर्घायु होंगे, चतन जीवी होंगे, और उसके साथ साथ इस प्रकार के ग्रंथ रत्न हमको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महाराज श्री के प्रति अपने प्रणाम निवेदन करते हुए आप सब भाई बहनों से एक बार फिर कहूंगा कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।
उपस्थित हमारे जी महाराजों को दोपहर में मध्याह्न 2:30 बजे उनके स्वागत और सुनने का अवसर कवि गोष्ठी के समय प्राप्त होगा। एक दो मिनट और आप अपने स्थान पर कर रहिएगा। अभी जुलाई माह में जो लोग पंडित जी गए थे वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, फिर निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और वहां की समाज पंडित जी की समाज ये चाहती है कि मुनि संघ के पावन सानिध्य में आगामी फरवरी माह में पंच कराने करने का उनका भाव है। वे सभी लोग पदाधिकारी और समाज के लोग महाराज श्री को श्री पर भेंट करना चाहते हैं, कृपया पंडित जी किलो में आ जाए और मुनि संघ को श्री पर भेंट करके अपनी भावनाएं व्यक्त करें। साथ ही जैसा कि आपको विदित है आगामी 16 तारीख को विद्यासागर प्रबंध संस्थान के लोकार्पण का कार्यक्रम मुनि संघ के पावन सानिध्य में आयोजित होने का कार्यक्रम तय है। वहां बीएचए मंदिर के पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता जो यहां पर उपस्थित हैं वे लोग भी मुनि संघ को श्री पर भेंट करना चाहते हैं। बीएचए के जो पदाधिकारी श्री बी के जैन साहब वहां के अध्यक्ष हैं वे लोग भी बधाई।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर
महाराज की संघ की स्तुति होगी।
जग को दे दी जग की निलिया
दिन रात लुटाया करते हो सम सम के अविनाश रमणिया हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आलम प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पांति गुरुवर प्रणाम उदक चंदन तांडल पोत कई चरु सुदीप सुदो बल आग कई धवल मांगल दान वाकुले मम ग्रहे मुनि राज मानते ओमि प्रभुति स्वाति राधा निवास अरगंद रुभय विद्यातम नाथ देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा बर्बाद देखो बन सी मखनिए चारों द्रव्य जान देखो बंद विधि मान देखो सुपर पहचान देखो परम प्रमाणिए अनुभव तार देखो जीवन के जताए देखो काऊ न सताए देखो बापे और